तो आज हम लोग इधर जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित हुए। तो मेरा जन्म स्थान श्री जगन्नाथपुरी में है, तो मेरे को इधर आने से बहुत हर्ष अनुभव होता है। इधर भी 150 साल पहले से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के प्रकटित हुए। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सिर्फ श्रीलंग शहर नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, अभी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह सारी दुनिया भर, अमेरिका, जर्मन, जापान, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, हर देश में जगन्नाथ मंदिर खुला हुआ है। तो क्यों ना, कलयुग में एक जगन्नाथ ही भगवान का अवतार होता है। शास्त्र में बताया गया भगवान का एक नाम त्रिजुग होता है, क्यों ना सत्य तृतीय द्वापर में भगवान आते हैं। एक कलयुग में भगवान सशरीर आते नहीं, द्वापर में, तृतीय में, सत्य में मनुष्य रूप धारण करके आए थे ना। शास्त्र का अनुसार कलयुग में भगवान मनुष्य रूप धारण करके आते नहीं। तो आजकल तो हमारा समाज में ये अवतार वो अवतार बहुत देखते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार भगवान का अवतार ही नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण महाप्रभु रूप में आए हुए, लेकिन वो तो भगवान रूप में आए नहीं, वो भक्त रूप में आए हुए, इसीलिए उनका छन्न अवतार बोलते हैं, अंत कृष्ण बहिर्गत। शास्त्र का अनुसार कलयुग में भगवान आते नहीं, तो लोगों को कौन कैसे उद्धार पाएंगे। तो भगवान आते हैं, कैसे आते हैं, दो रूप में आते हैं। कलि काल नाम रूप है कृष्ण अवतार, इस कलयुग में भगवान कृष्ण आते नहीं, लेकिन उनका नाम रूप में आते हैं, नाम ब्रह्म बोलते हैं। एक नाम ब्रह्म होता है और एक दारू ब्रह्म होता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति, इसको दारू ब्रह्म बोलते हैं। तो आप लोग सुने हुए हमारा जरा हिंदू धर्मावलंबी अवलंबियों के लिए पर चार धाम यात्रा हम लोग करते हैं। आदि शंकराचार्यों ने भारत के चार दिशा पर चार पीठ स्थान स्थापन किए। बद्रीनाथ में बद्रीनारायण भगवान है, बद्रीनारायण भगवान सत्ययुग में भगवान आए हुए बद्रीनारायण रूप में, उत्तर दिशा में उनका पीठ स्थान है। और पश्चिम दिशा पर द्वारकानाथ है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र द्वापर युग में आके लीला विलास किए थे। और तृतीय युग में दक्षिण में हमारा रामेश्वर है, रामनाथ, ये बद्रीनाथ, द्वारकानाथ और रामनाथ तृतीय युग रामचंद्र रूप में आए। और कलयुग में जगन्नाथ, ये जगन्नाथ ही कलयुग का भगवान है, ये जगत का नाथ होता है, एक कोई एक विशेष हिंदू का नाथ नहीं होता है, ये जगतवासियों का नाथ होता है, इसीलिए उनका नाम जगन्नाथ रखा गया। तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का प्रणाम मंत्र होता है, मैं बताऊंगा, मेरा पीछे पीछे आप भी गाएंगे हाथ जोड़ के सब, भगवान जगन्नाथ कृपा प्राप्त करने के लिए। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ स्वामी की। तो जगन्नाथपुरी धाम, जगन्नाथ के बारे में स्कंद पुराण, जितना हमारा 18 पुराण में सबसे बड़ा पुराण होता है स्कंद पुराण। इस स्कंद पुराण में उत्कल खंड में जगन्नाथ या नीलाचल धाम के बारे में वर्णना किया गया। तो स्कंद पुराण के बगैर दूसरे पुराण में भी जगन्नाथ के बारे में वर्णन किया गया। जगन्नाथ का इतिहास बहुत पुराना इतिहास होता है। तो मैं शास्त्र में ऐसे बताते हैं, तो जगन्नाथ का रूप कब से प्रकट हुआ इस धरती पर। तो ब्रह्मा का आयु 100 साल होता है। कैसा 100 साल होता है, हमारा 100 साल जैसा ऐसा नहीं, सत्य तृतीय द्वापर कलि ऐसा करके 1000 बार होता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, तो ऐसा 30 दिन में एक महीना, 12 महीने में एक साल, ऐसा भगवान का उम्र, भगवान ब्रह्मा 100 साल तक उनका आयु होता है, तो भगवान ब्रह्मा का आयु को पौरा बोलते हैं, और उनका आयु का अर्धेक होता है 50 साल होता है, इसको परार्ध बोलते हैं। शास्त्र का वर्णन का अनुसार नीलाचल धाम पर नील समुद्र का तीर में उपस्थित जो है स्थित जो नीलाचल पर्वत होता है, नील समुद्र का तीर में नीलाचल पर्वत का ऊपर जो नील कंदर होता है, नील गुफा होता है, उसका अंदर में भगवान नील माधव का रूप में प्रकटित होकर सेवा पूजा ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्मा का 50 साल उम्र तक नीलाचल धाम में भगवान नीलकंदर में नील माधव रूप में आत्म प्रकाश करके भक्तों से सेवा ग्रहण करते हैं। और ये जो रूप हम लोग देखते हैं चतुर्धा मूर्ति, ये ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध होता है, ये अभी इस रूप में जगतवासियों को कल्याण के लिए इस रूप में दर्शन देंगे। तो आप लोग शायद सुने हुए जे क्यों भगवान का रूप ऐसा हुआ, हम लोग तो मालूम है जगन्नाथ कृष्ण है, भाई बलराम बहनी भगिनी के साथ बैठे हुए, लेकिन कृष्ण को तो देखने के लिए ऐसा नहीं लगता है, बलराम को देखने के लिए ऐसा नहीं, सुभद्रा माँ को देखने के लिए ऐसा नहीं, तो ऐसा रूप में क्यों अभी धरती पर उन्होंने दर्शन देते हैं। आप लोग शायद सुने ये पुराण में वर्णन किया गया क्यों भगवान का ऐसा रूप हुआ, राजा इंद्रदुम्न में आए से समुद्र में लकड़ी आया, तो एक विश्वकर्मा आए तो उन्होंने राजा को बताए तो 21 दिन मैं अंदर रहूँगा, ये मूर्ति बनाऊंगा, उससे पहले दरवाजा नहीं खोलना। तो अंदर में वो बुढ़े हुए जो काठ मिस्त्री थे, कारपेंटर थे, तो मूर्ति बनाते थे तो आवाज आता था, तो 15 दिन के बाद कुछ इकन कमन सिटी है, 15 दिन के बाद कुछ आवाज नहीं सुना गया, तो आवाज नहीं आया तो राजा का रानी गुंडीचा थे, गुंडीचा माता जी गुंडीचा बताया, देखो बुढ़ा आदमी मर गया, दरवाजा खोलो। तो राजा ने बताया नहीं नहीं 21 दिन तक नहीं कर खोलने के लिए बताया, लेकिन रानी ने बाध्य किए तो दरवाजा खोल दिए, तो मूर्ति संपूर्ण नहीं हुआ, असंपूर्ण रह गया, और दैववाणी हुआ तुम मेरा इसी मूर्ति का पूजा करो, ये भी एक मेरा स्वरूप है। लोग इस बात को सुनने से सोचते हैं ये असंपूर्ण मूर्ति है, लेकिन असंपूर्ण नहीं है, ये पूर्णतम विग्रह होता है। तो भगवान का ऐसा रूप में भगवान क्यों आत्म प्रकाश किए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कृष्ण का रूप ऐसा क्यों हुआ, देखिये भगवान कृष्ण तो 11 साल 6 महीना उम्र तक वृंदावन ब्रज में थे, तो 11 साल 6 महीना उम्र होने के बाद गोपपुर वृंदावन छोड़ के भगवान मथुरा चले गए, जो 13 साल 6 महीने तक रहे, ऐसा 25 साल उम्र हो गया तो भगवान मथुरा छोड़ के द्वारका चले गए, द्वारका में 100 साल उनका शासन किए, 125 ईयर्स 125 साल भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर उनको प्रकट लीला किए थे। तो जब द्वारका में भगवान थे, द्वारका में 16108 महिषी रानियों को उनको शादी किए थे, उनका पत्नी थे 16108 पत्नी थे, और सब रानियों ने बहुत मन प्राण के सेवा भी करती थी, और सब रानियों एक एक रानियों के लिए एक एक महल बनाए थे, और द्वारका ऐश्वर्य कितना, इतना ऐश्वर्य वर्णन भी कर नहीं जा सकता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का इतना ऐश्वर्य है, इतना पत्नी है, तब भी भगवान श्री कृष्ण का मन में शांति नहीं था। शांति नहीं था इसका मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण का मन हर समय ब्रज में वृंदावन में पड़ा रहा था। तो द्वारका का महिषी ने सोचने लगे ये क्या होता है, हम लोग प्रभु को इतना प्यार से सेवा करते हैं, इतना ऐश्वर्य, लेकिन प्रभु ने क्यों हर समय वृंदावन के बारे में सोचते हैं? वृंदावन में ग्वालियों ने भगवान का प्रभु का क्या सेवा करते, क्या लीला होता था ब्रज में, प्रभु क्या बाल्य लीला होता था जो प्रभु ब्रज लीला के बारे में हर समय सोचते हैं। कभी कभी कृष्ण सोते रहते जागते राधा राधा गोपी गोपी करके चिल्लाते थे, तो महिषियों के मन में बहुत आग्रह आया जो हम लोग भी प्रभु का वो बाल्य लीला श्रवण करना चाहिए जो बाल्य लीला का इतना चमत्कार था जो प्रभु भी भूल नहीं सकता है, तो ब्रज लीला कौन बताएंगे, तो उधर तो कोई नहीं देखने वाला ब्रज का लीला, देवों की वसुदेव तो देखे नहीं, एकमात्र एक व्यक्ति थे उधर माता रोहिणी, बलराम के साथ माता रोहिणी भी वृंदावन में थे जब कृष्ण भगवान उनको बाल्य लीला करते थे वृंदावन में, तो सब रानियों ने जाके माता रोहिणी को अनुराध किए, माता रोहिणी आप हम लोग को भगवान का प्रभु का ब्रज लीला बाल्य लीला सुनाइए। तो माता रोहिणी ने बताया हाँ मेरे को तो मैंने सब देखा, मैं बताऊंगी, लेकिन मैं जब कृष्ण का बाल्य लीला बताऊंगी तो कृष्ण बलराम को नहीं सुनना, कृष्ण बलराम सुनेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए जब कृष्ण बलराम बाहर जाएंगे द्वारका में उपस्थित नहीं रहेंगे उस समय मैं तुमको कृष्ण का बाल्य लीला बताऊंगा। तो एक बार ऐसा हुआ था कृष्ण बलराम कुछ सभा मीटिंग करने के लिए सुधर्मा सभा पर गए थे, तो इस सुजग लेके तो एक घर में 16,108 सब रानियों ने इकट्ठा हो गई। अतः माता रोहिणी को बोला आप अभी प्रभु का बाल्य लीला बताइए, तो माता रोहिणी ने सुभद्रा को बुलाई और सुभद्रा को बोले तुम दरवाजे पर खड़ी रहो, कृष्ण बलराम आ जाएंगे तो मेरे को इशारा देके बोल देना, कृष्ण बलराम आ गए तो मैं कथा बंद कर दूंगी। तो माता सुभद्रा दरवाजे पर खड़ी रही, रोहिणी माता कृष्ण का बाल्य लीला परिवेशन करने शुरू कर दी, और जो कृष्ण का बाल्य लीला तो इतना आकर्षणीय होता है ना, और जितना महिषी लोग थे इतना कृष्ण का बाल्य लीला श्रवण में इतना मोहित हो गई तो आत्मविस्मृत हो गई, सब रानियों का बाह्य लीला बाह्य चेतना खो गया, तो प्रभु का लीला में एकदम लीन हो गए। तो सुभद्रा देवी जब सुन ठहरी थी वो तो भी सुनते थे ना, तो वो उन्होंने भी सुनते थे और सुनते उनका भी आत्मविस्मृत हो गए और उन्होंने बाह्य ज्ञान हरा गए खो गया, तो सब तन्मय लीन होकर सुनते थे भगवान श्री कृष्ण का ब्रज लीला। तो जब माता रोहिणी ने ब्रज लीला परिवेशन करना शुरू कर दी तो सुधर्मा सभा पर थे कृष्ण बलराम, तो उनको मालूम हो गया माता रोहिणी ने बाल लीला परिवेशन करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का लीला इतना चमत्कार होता है तो कृष्ण भगवान को भी आकर्षण करते हैं, तो दो भाइयों ने उधर से दौड़ के आ गए, तो अंदर जाने के लिए कोशिश करते तो दरवाजे पर सुभद्रा देवी ठहरी थी ऐसे हाथ कर, तो दो भाई दो साइड में ठहर गए, एक साइड में जगन्नाथ एक साइड में बलदेव। तो माता रोहिणी माता सुभद्रा तो बोल देना था ना जब कृष्ण बलराम आ गए तुम कथा बंद करो, लेकिन उनको तो ज्ञान नहीं, तो सुभद्रा को मालूम नहीं कृष्ण बलराम आ गए तो बोल नहीं पाए, तो माता रोहिणी बोलते रहते थे अरे दो भाई बीच में बहनी तीनों बच्चे सुनते थे, और कृष्ण का लीला इतना चमत्कार होता है तो कृष्ण को भी चमत्कृत कर देता है, कृष्ण बलराम सुभद्रा ने लीला का श्रवण करते थे, श्रवण करके कृष्ण बलराम ने सोचा हो हम लोग ने इतना चमत्कार लीला किया, ब्रज गोपियों का हमारे प्रति इतना प्रेम है, ये ब्रज गोपियों का प्रेम का पराकाष्ठ श्रवण कर से वो लोग आंखों बड़ा बड़ा हो गया, कोई चमत्कार कुछ सुनते ना आंखों बड़ा हो जाता है ना, हाथ अंदर घुस गया, पांव अंदर घुस गया, इसको महाभाव प्रकाश बोलते हैं। ये होता है भगवान कृष्ण। कृष्ण का नाम का मतलब होता है आकर्षयति इति कृष्ण, ये सबको आकर्षण करने वाले। ब्रजवासियों को आकर्षण किए, ब्रज का जितना पशु पक्षी थे, जानवर थे, सबके भगवान आकर्षण कर देते। भगवान कृष्ण जब बंसुरी बजाते थे तो ब्रज का जो जमुना नदी का पानी नीचे जाने वाला थे वो स्तब्ध हो जाते थे, ऊपर जाते थे। भगवान कृष्ण का बंसुरी का मधुरिमा इतना चमत्कार था तो ब्रज का पहाड़ पर्वत भी गिर जाते थे, मेल्ट हो जाते थे। भगवान कृष्ण इतना चमत्कार आकर्षण होता है तो स्वर्ग का रमणीय भी भगवान कृष्ण प्रति आकर्षित हो जाते। लक्ष्मण देवी भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण इतना आकर्षण होता है, कृष्ण भगवान स्वयं भी आकर्षित हो जाता है। एक बार द्वारका में अगर नव वृंदावन बनाया था विश्वकर्मा ने, तो कृष्ण भगवान जब जाते थे तो स्तंभ स्फटिक पत्थर का स्तंभ था, तो आपका प्रतिबिंब देखते हुए कृष्ण भगवान देखो बोलते हो कष्ट चमत्कार पुरुष इतना अच्छा लड़का कौन है, आपका प्रतिबिंब का आलिंगन करने के लिए जाता है। ये कृष्ण का माधुर्य इतना आकर्षण होता है। तो कृष्ण भगवान जो आपका ब्रजलीला सुनते थे तो बहुत आकृष्ट हो गए, ऐसा आंखों बड़ा बड़ा हो गया, जैसे आप लोग देखते हैं अभी जगन्नाथ का हाथ अंदर घुस गया, पहाड़ अंदर घुस गया, तीनों भाई बहन उधर दरबार पर इधर बैठे थे। अब माता रोहिणी ने कृष्ण भगवान का बाल लीला प्रदर्शन करते थे। तो इस समय दैव का इच्छा का अनुसार इस समय नारद मुनि उधर आके पहुंच गए, नारायण 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 गाते पहुंच गए। तो नारद मुनि आके पहुंच गए ना, तब कृष्ण बलराम और सुभद्रा का बाहर जान आ गया। तो आत्मविस्मृत होकर जो उनका महाभाव प्रकाश था, तो नारायण आवाज सुनाना, नारद मुनि आ गए, तो उस रूप को छोड़ के उनका स्वाभाविक रूप प्राप्त हो गए। तो नारद मुनि देख लिए, तो नारद मुनि ने पूछने लगे कृष्ण भगवान को, प्रभु मैं तो सब वैकुंठ पर जाता हूँ, मैंने तुम्हारा सब रूप का दर्शन किया, लेकिन तुम्हारा इतना चमत्कार रूप का तुम्हें कभी भी दर्शन नहीं किया, तो इस रूप में आप किधर रहते हो? तो कृष्ण भगवान ने बताया, हाँ ये मेरा विशेष रूप है, ये जो रूप तुम मेरा देखा ना, ये देव अगोचर होता है, वेद गोप्य होता है, वेद का भी इस रूप का संधान नहीं है, देवताओं का भी इस रूप का संधान नहीं होता है, बहुत गोप्य रूप होता है। इस रूप धारण करके मैं दक्षिण सागर का तीर पर उधर नीलाचल पर्वत ऊपर मैं इस रूप में रहता हूँ। ये भगवान श्री क्षेत्र पुरी धाम, ये भगवान का हॉलीडे रिसोर्ट होता है। तो गवर्नर होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, बहुत मैनेजमेंट करता है ना, तो मैनेजमेंट करते हुए थक जाता है, क्या करता है तो समुद्र किनारे पर जाता है, हिल टॉप जाता है। तो भगवान विष्णु भी मैनेजमेंट करते करते हुए तब थक जाता है, तो पुरी में आकर हॉलीडे रिसोर्ट में रिट्रीट करते हैं। लेकिन भगवान के लिए वो मैनेजमेंट करते हैं और इधर हॉलीडे होम भी रहते हैं, दोनों ही काम होता है। तब नारद मुनि सुना, तो नारद मुनि बताया, प्रभु मैं आपका असली भक्त हूँ, आप मेरे को भक्त रूप में ग्रहण करते हो तो एक कृपा कर दीजिए, तो आप जो रूप में मैं आपका दर्शन किया आप उसी रूप को प्रकाश कीजिए, सारा जगतवासी से आपको दर्शन कर पाएंगे। तो कृष्ण भगवान बोले, तथास्तु, मैं कलयुग में दारू ब्रह्म रूप धारण करके इसी रूप को प्रकट करूंगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा को जो रूप में हम लोग आज देखते हैं, ये रूप ऐसा ही है, ये रूप का विशेष लक्षण होता है। ये जगन्नाथ रूप बहुत करुणामय होता है, क्योंकि ना हम लोग एक कलयुग का बंधन से बहुत पतित होता है, जो पतितवापन होता है, सबसे सब जो पतित होता है, तो उनको उद्धार करने का एक भगवान का विशेष रूप होता है। भगवान श्री जगन्नाथ ने देखता है ना, भगवान आंखों देखे हुए ना, आंख कैसा है, लाल है, लाल रेड है, चारों तरफ रेड ही है। तुम्हारा भक्त लोगों ने बोलता है
तो जब कुछ किसी को करुणा आता है, आंखों से आंसू बहते हैं, इधर से आंसू बहते हैं ना, सब जीवों का इधर थोड़ा रेड कलर स्पॉट है, रेड स्पॉट लाल है, तो हम लोग का थोड़ा करुणा है क्यों, थोड़ा रेड स्पॉट है, जगन्नाथ का पूर्ण करुणामय है, इसलिए उनका आंखों चार और सब रेड है, लाल होता है, ये विशेष करुणा रूप होता है। और भगवान आंखों होता है, भगवान सोते नहीं, उनका कृपा दृष्टि हर समय जीवों को दान करते हैं। जब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विग्रह प्रकटित हुए, इंद्रदेव ने राजा ने सत्यदेव को प्रकट किए, तो जगन्नाथ ने पूछा इंद्रदेव को, मैं तुम्हें कुछ वरदान देना चाहता हूँ, तुम्हें क्या वर चाहिए? राजा इंद्रदेव ने तीन वर मांगे थे, तो राजा इंद्रदेव ने बताया, प्रभु आप मेरा पर प्रसन्न हो तो मेरे को एक वर दीजिए, पहला वर ये चाहिए, मेरे को पुत्र संतान नहीं होगा, ऐसे कोई भगवान को प्रार्थना करता है महालोगों ने, प्रभु मेरे को कृपा कर दीजिए, अर्जुन पुत्र नहीं होगा, सब पुत्र चाहते हैं ना, तो भगवान अरे सब तो पुत्र चाहते हैं, तुम क्यों पुत्र चाहते नहीं? तो राजा इंद्रदेव ने बताया, जब मेरा पुत्र होगा तो मैं जो मंदिर बनाए आपके लिए, मेरा पुत्र होगा तो उसका अहंकार होगा, ओ मेरा बाबा का मंदिर है, मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, भगवान का मंदिर का ऊपर कोई मालिकाधिकरण करना वो अच्छा नहीं होता है, कोई कोई लोगों ने झगड़ा करते हैं, मैं मालिक हूँ, लेकिन दादा इंद्रदेव ने बताया मेरा पुत्र नहीं चाहिए, पुत्र होगा तो हाँ वो ये दावी करेगा मेरा बाबा का मंदिर है, मेरा मंदिर है, तो भगवान ने बताया तथास्तु, ये पहला वरदान था। तो सेकंड बोल वरदान क्या है, तो राजा ने बताया आप एक कृपा कर दीजिए, तो आप खाना खाएंगे ना, आप दिन भर खाना खाएंगे, इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में जो होटल है बोलते वर्ल्ड का सबसे बड़ा होटल है, उधर लाखों लाखों लोग जाके तो प्रसाद मिलते हैं उधर। तो जगन्नाथ राजा ने बताया आप हर दिन खाना खाएंगे, बोलते आप खाना खाएंगे, खाने के बाद हाथ धोएंगे, हाथ सूखने से पहले फिर आपको खाने पड़ेगा। तो भगवान जगन्नाथ ने सोचा यही तो बहुत अच्छा वर है, ठीक है तथास्तु, तो खाने के लिए तरह का मिलेगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं जगन्नाथ हाँ वो खाने वाला भगवान है, ही ईटिंग गॉड, हमारा गौरा का महाप्रभु डांसिंग गॉड, और जगन्नाथ होता है ईटिंग गॉड, खाने वाला भगवान। लोग बोलते हैं भगवान बद्रीनारायण रूप में हिमालय में तपस्या करते हैं, वही भगवान कृष्ण रूप में वृंदावन में खेला करते हैं, वही भगवान जगन्नाथ रूप में पुरी में खाना खाते हैं, वही भगवान रंगनाथ रूप में साउथ इंडिया में सोते हैं, और वो भगवान तिरुपति में वो रुपया काउंटिंग करते हैं उधर बैठे। तो भगवान का सब सुख प्राप्त होता है ना, वो तो भगवान है ना, तो ध्यान से शुरू करके रुपया काउंटिंग करना सब कुछ भगवान को करने पड़ता है। तो भगवान आए हैं जगन्नाथ क्यों, जीव को उद्धार करने के लिए। तो जीव को कैसे उद्धार करेंगे, कलयुग जीव तो बहुत मूढ़ होता है, कुछ विवेक ज्ञान नहीं होता है, ध्यान तपस्या त्याग धर्म कुछ करने चाहते नहीं, तो कैसा उद्धार करेंगे। तो जगन्नाथ आए जीव को उद्धार करने के लिए, कैसा, सिर्फ भगवान प्रसाद देते हैं, जगन्नाथ प्रसाद जो पाएंगे वो उद्धार पा जाएंगे। कृष्ण भगवान गौरांग रूप में आए, चैतन्य रूप में, कलयुग का लोग ध्यान कर नहीं पाएंगे, तपस्या कर नहीं पाएंगे, यज्ञ कर नहीं पाएंगे, अर्चना कर नहीं पाएंगे, ठीक है तुम लोग बहुत लेजी हो, बहुत आलस्य परायण हो, तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, तुम हरिनाम करो बस, हरिनाम तो बहुत आसानी होता है ना, हाँ हरिनाम करना उतना कठिन ही नहीं। मेरे को एक बात याद आता है, मैं जब इस्कन में जॉइन नहीं किया था, घर में था, पढ़ाई करता था, तो घर में बैठकर मैं जॉब करता था, गीता भागवत पढ़ता था, और कॉलेज का पढ़ा सुना इतना नहीं करता था। तो मेरा एक बड़ा बहन था, तो मेरे को क्रिटिसाइज करके बोलता था, अरे ये बेटा अच्छा पढ़ाई करना चाहता नहीं, कुछ नौकरी करना चाहता नहीं, वो चाहता है हम बहुत लेजी है, तो बाबा जी बन जाएगा आप बैठ कर हरे कृष्ण करेगा, ये कुछ काम का नहीं है, ऐसा बोलता है, लेजी है, बहुत आलस्य है। तो मैं सुनता था, कुछ नहीं बोलता था। तो जब भक्त बन गया, इसका नाम जैन गया, तो रोज तो सोलमाला जब करने पड़ता था, तो जब सोलमाला जब करता था ना, मेरे को नींद आ जाता था, जब को मन नहीं लगता था। तो मैं सोचा मैं इतना लेजी हूँ, तो जब भी करना था मेरे को नहीं आता है। मैं भगवान का दूसरा की कृपा है, मेरे लेजी से लेजी हूँ और दूसरा की कृपा है। तो मेरे मन में आया ये भगवान दूसरा एक उपाय लेकर है, मेरा जगन्नाथ दूसरा उपाय लेकर है। हम जैसे पतित हूँ, मेरे को उद्धार करने के लिए जगन्नाथ क्या लेकर है, वो प्रसाद लेकर है। अरे जपमाला हाथ में लेने से नींद आ सकता है, जगन्नाथ प्रसाद आएगा नींद आएगा, नींद चला जाएगा। महाप्रसाद है गोविंद है नम ब्राह्मण है वैष्णव है गपा गप खाने से। ये जगन्नाथ इतना कृपामय होता है, तुम तपस्या नहीं कर पाते हो, त्याग नहीं कर पाते हो, ध्यान नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते हो, मेरा प्रसाद लो बस, सब पाप से छुटकारा मिल जाए। ये वेद में जगन्नाथ का प्रसाद का महिमा गान करते हैं, प्राप्त मात्र में भक्तव्य पाने का साथ साथ चांडाल को भी उद्धार करते हैं। वेद में ये बताया गया जगन्नाथ का प्रसाद इतना शुद्ध पवित्र होता है, जो पत्ता में कुत्ता खाता है एक पत्ता पर ब्राह्मण भी खा सकता है, अभी खाते नहीं। उधर चांडाल जगह जो कुछ जगह पूरी का पंडाल होते हैं, आप जाएंगे आपका मुंह में जगन्नाथ प्रसाद के मुंह से देखो भी खाएंगे, इतना पवित्र होता है। इस जगन्नाथ का प्रसाद का महिमा में थोड़ा वर्णन करूंगा, समय बहुत कमी है, भगवान को बहुत सारी लीला है। उसके बाद हमारा भक्त लोग डांस भी करेंगे जगन्नाथ का आनंद प्रदान करने के लिए। तो जगन्नाथ का प्रसाद का महिमा में बताऊंगा, पुराण में जैसा वर्णन किया गया। एक बार नारद मुनि ने वैकुंठ गए थे, वैकुंठ जाके माता लक्ष्मी को बहुत सेवा करते थे, उनका बर्तन परिष्कार करते थे, अंगिना को परिष्कार करते थे। तो माता लक्ष्मी तो बहुत खुश हो गई। तो बस मैं तुम्हारा पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूँ, क्या तुम्हारा मन का वासना बताओ, क्या तुमको चाहिए। तो नारद मुनि ने बताया, माता आप पहले शपथ कीजिए मैं जो मांगूंगा आप देंगे। लक्ष्मी तो पता ठीक है, लक्ष्मी माता क्या अभाव है, जो चाहते दे सकेंगे ना, तुमको क्या चाहिए। तो नारद तो मेरे को नारायण भगवान का महाप्रसाद चाहिए, महाप्रसाद प्लेट चाहिए। तो लक्ष्मी माता को थोड़ा चिंतित हो गई। तो कुछ दिन पहले नारायण भगवान ने माता लक्ष्मी को बोले थे तो सावधान, मेरा प्रसाद किसी का नहीं जाना आज से। तो किसी को लक्ष्मी माता प्रसाद नहीं देते थे, तो नारद मुनि चाहते हैं महाप्रसाद चाहिए। तो माता लक्ष्मी बोले, नहीं बस प्रभु ने बताया महाप्रसाद किसी को नहीं मिलेगा, तुमको और कुछ वासना है और जो कुछ चाहिए बताए मैं तुमको दूंगी, तो महाप्रसाद नहीं दे पाऊंगी। नारद मुनि बोले, नहीं माँ मेरे को दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो महाप्रसाद ही चाहिए। तो लक्ष्मी बोले, तो महा समस्या कभी क्या होगा, तो ठीक है मैं कोशिश करूंगी। तो उस दिन दोपहर को नारायण बैठ के खाना खाते थे, माता लक्ष्मी देवी खाना परोसते थे, सर्व परिवेशन करते थे। तो लक्ष्मी देवी मन बहुत दुखी थी, मुँह काला हो गई थी, भारी करके उधर बैठे थे। देखिए कोई स्वामी को पत्नी परिवेशन करते हैं खाना, मुँह काला करके भारी करके बैठते हैं, स्वामी को ऐसा लगेगा तो अजीर्ण हो जाएगा ना। तो भगवान विष्णु बता रहे, तुम क्यों दुखी हो, तुम मुख भारी करके क्यों बैठे हो, क्या प्रॉब्लम है, समस्या है तुम्हारा। तो माता लक्ष्मी ने बताए, देखो तुम तो बोल दिए तुम्हारा प्रसाद किसी को नहीं देने के लिए। तो नारद आया, बहुत सेवा करता था, मैं उसका शपथ क्या तुम्हारा वासना में पूर्ण करूंगी। तो नारद ने मैं बोलते ना, मेरे को महाप्रसाद ही चाहिए, तो मैं तुम्हारी समस्या में पड़ गई, तुम तो निर्देश दे महाप्रसाद नहीं देने के लिए। नारद बोलते मेरे को वही महाप्रसाद ही चाहिए, तभी मैं क्या करूँ, इसलिए बहुत दुखी हूँ। तो नारायण ने बोला, ठीक है मैं तुमको बोला था महाप्रसाद किसी को नहीं देने के लिए, लेकिन आज एग्जम्पशन है, मैं इधर उधर देखता हूँ तब मैं जैसा नहीं मालूम पड़ेगा तुम मेरा प्लेट उठा के ले जा रहा हूँ, लेके नारद को खिला। तो लक्ष्मण जी बहुत खुश हो गए, वो नारायण का प्रसाद लेके नारद मुनि को दे दी। और नारद मुनि को जो महाप्रसाद प्लेट मिला तब क्या करेगा, आपको महाप्रसाद प्लेट मिला क्या करेंगे, थोड़ा रखे बाद में आता बताएंगे, वो घपा घप खाना शुरू कर दिए। और जब प्रसाद खाए ना, ये तो ऑर्डिनरी प्रसाद नहीं है, माता लक्ष्मी देवी कुकिंग किए, स्वयं परिवेशन किए, स्वयं नारायण खाए, उसी प्लेट से जो प्रसाद है। और वो प्रसाद खा के नारद मुनि को इतना आनंद आया, वो आनंद से आपको और स्थिर करके रख नहीं पाए, वो नाचने शुरू करे कर दिए, कूदना शुरू कर दिए, नाचते कूदते हुए एक तरह पर स्थान पर आपको रख नहीं पाए, तो दौड़ने छूटने शुरू किए। तो दौड़ते नारायण 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 करके श्री चतुर्दश भगवान स्वर्ग मर्त पाटल सब छूटते रहते थे। बहुत आनंद आता था, इतना आनंद आता था आपको संभाल के रख नहीं पाते थे, सब धाम पर छूटते थे। तो छूटते हुए छूटते गए तक कैलाश में पहुंच गए। अब जोर से नाचते हैं कूदते हैं नारायण का नाम करते हैं, तो सिद्ध भगवान मिले। तो सिद्ध बोले, अरे नारद क्या हो गया, क्या हुआ, तो शांत हो जाओ शांत हो जाओ। अरे नारद मैं तो देखा तुम भगवान का नाम करके हर्ष में आनंद में है, लेकिन इतना आनंद कभी देखा नहीं। तो नारद शांत हो गए। तो नारद क्या हुआ तुम्हारा, तुमको इतना आनंद कभी मैं देखा नहीं, इतना आनंद कैसे तुमको मिला। तो नारद ने बताया, देखो मैं वैकुंठ गया था, माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया, माता लक्ष्मी जी ने मेरे को नारायण का महाप्रसाद दिया, और महाप्रसाद लेने के बाद मेरे को इतना आनंद आता है, तो आनंद को मैं संभाल नहीं दे सकता हूँ, इसीलिए चतुर्दश भुवन में घूमते फिरते रहता हूँ, नाचते रहता है। भगवान वैकुंठपति का प्रसाद मेरे को मिल गया। तो महादेव ने पूछे, नारद मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तो मेरे लिए कुछ महाप्रसाद ले आए। तो नारद, तुम्हारे लिए महाप्रसाद जो मेरा सब खा लिया, कुछ नहीं ले आया। तो नारद शिव जी बोलते, अरे तुम कैसा दोस्त हो, तुमको अच्छा चीज मिला तुम सब खा ले, मेरे लिए कुछ नहीं ले आए। तो नारद को चिंतित होकर दुखी हो गया, मैं तो कुछ नहीं ले आया क्या करूँ। तो नारद मुंह को नीचू करके ऐसा ठहरे थे, तो हाथ ऐसा डर के ठहरे थे। तो नारद ने देखा वो इधर कणिका मात्र प्रसाद है इसका अंदर में, तो लगता नारद मुनि खाना खा के इतना खुश हो गए, हाथ धोने का टाइम नहीं था ना, तो उधर लगा थोड़ा कणिका, इसलिए कणिका मात्र प्रसाद को बहुत प्राधान्य दिया जाए, कणिका मात्र प्रसाद था। तो नारद मुनि, ओ महादेव हे प्रसाद है, प्रसाद है, महाप्रसाद है, ये कणिका मात्र प्रसाद है। तो नारद मुनि थोड़ा प्रसाद था उसको लेके महादेव का हाथ दिए, तो जुहा पर लगा दिए। और कोनी का मात्र प्रसाद तो महाप्रसाद, हाँ महादेव का मुंह पर लगा ना, तो उनको भी बहुत आनंद आ गया। तो उनका आनंद आने से वो भी नाचने लगे कूदने लगे, और आनंद बढ़ता था बढ़ता था बढ़ता था, इतना जोर से आनंद आ गया, तो महादेव ने तांडव नृत्य शुरू कर दिया। तांडव नृत्य कब होता है मालूम है, जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है उस समय तांडव नृत्य होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो महादेव भगवान को इतना आनंद आ गया, इतना जोर से नाचने कूदने लगे, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा ऐसा, हाँ सब लोगों ने भयभीत हो गए, क्या हो गया। तो माता पार्वती ने, पार्वती अंदर में थे गुफा का अंदर में, माता क्या सब कांपते क्यों। तो बाहर आ गए तो भगवान शिव जी तांडव नृत्य शुरू कर दिए। तो माता पार्वती, अरे थोड़ा शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, शांत हो शांत हो। तो बहुत कोशिश करके तो माता पार्वती ने शिव जी को शांत कर दिया। तो माता पार्वती ने पूछे, प्रभु ये क्या हो गया, आप अभी असमय में क्यों ये तांडव नृत्य करते हैं, ये तो ब्रह्मांड का प्रलय का समय आया नहीं, तो आपको इतना आनंद क्यों, इतना आनंद से नाचते खुजते क्यों। तो शिव जी सगर्व को गर्व के साथ बताया, देखो मेरा कितना भाग्य है, वैकुंठ से नारद मुनि प्रसाद ले आए थे और मेरे को प्रसाद मिला, अरे प्रसाद लेके मेरे को इतना आनंद आता है, तो मैं आपको स्थिर करके रख नहीं पाता हूँ। तो ना तो माता पार्वती ने बताया, हो बहुत अच्छा बात है, तुमको प्रसाद मिल गया, मेरे लिए कुछ प्रसाद है। तो महादेव ने बोला, अरे तुम्हारे लिए कैसे प्रसाद आएगा, ये तो कौनी का मात्र था, मैं सब खा लिया। तो महादेव ने बताते, मेरा सौभाग्य है, तुम्हारा मेरा भाग्य नहीं है भेजना, बहुत भाग्य महाप्रसाद है, गोविंद नम ब्रह्मण है वैष्णव महाप्रसाद, बहुत भाग्य से आता है, सौभाग्य से मिलता है, ऐसा नहीं मिलता है, तुमको कैसे मिलेगा। तो पार्वती ने पूछा, क्या मैं तुम्हारा अर्धांगिनी हूं, जो कुछ काम होता है मेरा हाथ तुम्हारा हाथ है, सबसे मेरे को तुम स्मरण करते हो, और वैकुंठ का महाप्रसाद मिला तुम सब खा ले, मेरे को स्मरण कर नहीं। तो ऐसा बोलते माता पार्वती बहुत गुस्सा की, बहुत क्रोध आ गया। तो इतना क्रोधान्वित हो गई माँ पार्वती, तो क्रोधाग्नि से पूरा ब्रह्मांड तपने लगा, उत्तप्त होने लगा, मुनि ऋषि देवता कोई स्थिर होकर रह नहीं पाए, सब आतंकित हो गए, अभी क्या होगा, ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा। तब ब्रह्मा और सब देवताओं को लेके भगवान विष्णु के पास गए, प्रणाम किए। भगवान विष्णु ने पूछा, रे तुम देवता लोग सब वैकुंठ आ गए, तो ब्रह्मांड में सब ठीक है? तो हाँ प्रभु, ब्रह्मांड में सब ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ है? ना आपका महाप्रसाद पूरा गड़बड़ कर दिया सब। तो क्या गड़बड़ हुआ? देखो ऐसा, आपका महाप्रसाद महादेव को मिला, पार्वती को मिला नहीं। तो माता पार्वती ने इतना गुस्सा करते हैं, उनका क्रोधाग्नि से ब्रह्मांड अभी भस्मभूत हो जाने के लिए जा रहा है। तो साथ साथ भगवान विष्णु नारायण भगवान एक गरुड़ का ऊपर आरोहण करके कैलाश पर आए। तो कैलाश पर आए तो माता पार्वती भगवान को प्रणाम की। तो भगवान नारायण बताए, माँ पार्वती आप बताए कितना प्रसाद तुमको चाहिए, जितना प्रसाद तुमको चाहिए मैं तुमको दूंगा, आप क्रोध शांत कर देंगे, देखो तुम्हारा सब संतान अभी ध्वंस हो जाएंगे, ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा। तो माता पार्वती शांत हो गए। तो नारायण बोले, कितना प्रसाद तुमको चाहेंगे मैं दूंगा। माता पार्वती ने बताया, नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ प्रसाद मिलने से नहीं होगा, तुम्हारा प्रसाद से वंचित होके, तुम्हारा प्रसाद से वंचित होने के कारण मेरे को जो दुख आता है, मेरे को जो दुख मैं प्राप्त करता हूं, मैं नहीं चाहता हूं इस ब्रह्मांड में कोई जीव को ऐसा दुख प्राप्त होगा, इस ब्रह्मांड में मेरा कोई संतान को ऐसा दुख प्राप्त होगा, मैं नहीं चाहता हूं। इस ब्रह्मांड में जितना सारे जीव होता है ना, सब जीवों का माँ होता है पार्वती देवी, सबका पिता होता है शिव जी, तो माता होता है पार्वती, एक तो कीड़े से शुरू करके इंद्र तक सबका माँ होता है पार्वती देवी। तो माता पार्वती ने बताया, मेरा ऊपर आप कृपा है तो एक कृपा कर दीजिए, इस ब्रह्मांड में कुत्ता का भी आपको प्रसाद मिलेगा, कुत्ता का भी ऐसा सौभाग्य होगा तो आपको प्रसाद मिलेगा। तब जगन्नाथ ने बताया, तथास्तु, तुम्हारा वासना पूर्ण होगी तो मैं इस कलयुग में नीलाचल धाम में दारू ब्रह्म रूप में मेरा आविर्भूत होगा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन रूप में, मेरा पास जितना प्रसाद भोग लगे वो प्रसाद होगा, तो मेरा भोग चढ़ाने के बाद वो प्रसाद तुमको भोग लगेगा, तब वो महाप्रसाद होगा। तो आप लोग आज पूरी जाएंगे, पूरी गए हैं कितना भक्त लोग पूरी गए हैं, हाथ उठाए, बहुत गए। तो बिमला मंदिर है ना जल्द पीछे, जगन्नाथ को जितना भोग चढ़ाते हैं तो सब बिमला का पास अर्पण होता है, तब वो महाप्रसाद होता है। इसीलिए बोलते हैं इस दुनिया में एक महाप्रसाद होता है, जगन्नाथ का प्रसाद, और कोई महाप्रसाद नहीं। तो जगन्नाथ का प्रसाद जो लेते हैं शास्त्र बताया गया, वो पाप से छुटकारा प्राप्त होता है। जय जगन्नाथ महाप्रसाद की। तो सेकंड वरदान था, थर्ड वरदान था, इंद्रद्युम्न राजा ने मांगा था, प्रभु आप कृपा करके हर समय दर्शन देते, आप नहीं सोना है, सब समय दर्शन देना है, डेढ़ दो घंटा सोना है। तो आज तक भी जगन्नाथपुरी में रात 12 बजे 1 बजे डेढ़ 2 बजे जाएंगे, दरवाजा खुला है, 2-3 घंटा प्रभु को विश्राम मिलते हैं। तो आज तो समय बहुत अतिक्रांत हो गया, हमारा दूसरा प्रोग्राम भी है, तो हम लोग इसके बारे में जो पहले प्रवचन था सीडी भी है और जगन्नाथ लीला का ग्रंथ भी है, बांग्ला में है, हिंदी में है, लेकिन दुर्भाग्य के कारण मैं ले आने के भूल गया। फिर बाद में और इस्कन मंदिर में बहुत सारी लीला है, भगवान बहुत सुंदर, जगन्नाथ कैसा भक्त वत्सल है, भक्त को भगवान कैसा रक्षा करते हैं, तो जगन्नाथ की लीला से आप लोग को मालूम पड़ेगा। तो समय खूब कम है, इसलिए मैं मेरा इस जगन्नाथ लीला कथा को इधर ही विश्राम देता हूँ। तो आप लोग जो मन जोग सहकार के श्रवण करते हैं, भारी संख्या से इधर उपस्थित हो गए, हमारा अनुष्ठान को सफल मंदिर किए, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ आप लोग के पास। जगन्नाथ मंदिर का जो मैनेजमेंट लोगों, भक्त लोगों ने जो हम लोग मौका दिए ये अनुष्ठान करने के लिए, इसलिए इसका काउंट से मैं जगन्नाथ मंदिर का जो कर्तृपक्ष होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, उनको हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता देता हूँ। आशा करता हूँ फिर अगले सालों में हम लोग आएंगे और आप लोग का साथ यह जगन्नाथ की लीला कथा रस आस्वादन करेंगे। जय जगन्नाथ स्वामी की, बलदेव प्रभु की, सुभद्रा देवी की, सुदर्शन चक्र की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, हरि नाम महामंत्र की, सर्वत भक्त वृंदा की, पिताई गौर सीतानाथ के आनंदे हरि हरि।